الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نیاز کر رہا تھا اللہ رب العزت نے جب کائنات کو بنانے کا فیصلہ کیا اس مقام پر جہاں آج کا کعبۃ اللہ ہے اس سطح پر پانی کو پیدا کیا اور یہ پانی بھنور کی طرح چکر کاٹنے لگا اور کرتے کرتے پوری زمین جو ہے یہ پانی کا ایک گولہ کا بن گیا. اب ہم نے یہ دیکھا ہے تجربہ کیا کہ جہاں پانی زور سے چکر کاٹ رہا ہوتا ہے وہاں ایک فوگ سی بنتی ہے، جھاگ کہتے ہیں اس کو، سمندر کی جھاگ مشہور ہوتی ہے. اس جگہ پر ایک جھاگ سی بننی شروع ہوئی اور وہ کنڈینس ہوتے ہوتے سٹون کی شکل بن گئی. اب جب سٹون بن جاتا ہے اور پانی اس پہ آ کے ٹکراتا رہتا ہے تو اور زیادہ وہ ٹربلنس کریٹ کرتا ہے، لہذا یہ سٹون ایکسپینڈ ہوتا چلا گیا اور ایکسپینڈ ہوتے ہوتے پانی کے اوپر یہ ساری زمین بن گئی. نیچے بھی پانی ہے اور اس کے سائڈوں پر بھی پانی ہے. اس اعتبار سے اگر ہم غور کریں گے تو معلوم ہوا کہ یہ جو زمین کا ٹکڑا اول بنا اس کو ہم کہیں گے اول عالم، دنیا میں سب سے پہلی چیز بننے والی، اور کیونکہ یہ سینٹرل پوائنٹ بھی تھا اس لیے اس کو مرکز عالم بھی کہیں گے. تو اس اعتبار سے یہ ایک بڑا اہم جگہ ہے جہاں سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کا سٹارٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس مقام پر اپنی تجلیات ذاتیہ کو ڈالا جو کہ ایک نور ہے اور وہ آسمانوں سے لے کر زمین کے گہرائی تک تو چلا گیا. اس بار سے یہ تجلیات خاصہ کا گھر بن گیا، خاص تجلیات اس سے پڑھنے لگی. مسلمان اس کمرے کی عبادت نہیں کرتے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بعد کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی جب کنسٹرکشن کی گئی تو اس دور میں کعبۃ اللہ کے جو پرانے پتھر تھے ان کو توڑ کر سمندر میں ڈال دیا گیا اور یہاں پر نئے پتھر لگا دیے گئے. اگر مسلمان پتھروں کی عبادت کرنے والے ہوتے تو پھر تو بھاگ پڑتے ان پتھروں کو اکٹھا کرنے، یا جہاں پر وہ پتھر ڈالے گئے ہوں گے اسی کو کعبہ بنا لیتے. کیونکہ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے بتوں کی عبادت کو برا سمجھتے ہیں تو تم بھی تو کعبہ کی پتھروں کی ہی عبادت کرتے ہو. یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم پتھروں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس جگہ پر جو اللہ رب العزت نے تجلیات ڈالی ان کی طرف فقط ہم منہ کر کے عبادت کرتے ہیں، کعبہ کی نیت کر کے کعبہ کی عبادت نہیں کر رہے، جہت الی الکعبہ کرتے ہیں، متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفہ کرتے ہیں، کہ ہماری ڈائریکشن فقط کعبۃ اللہ کی طرف ہے، ورنہ ہمیں کعبہ کے پتھروں سے کچھ لینا دینا. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی دوسری زمین کعبۃ اللہ تو ایک کوٹھا ہے، ایک ہائٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے اس کی. اگر ہم مسجد الحرام میں تیسری منزل پہ کھڑے ہوں تو کوٹھا مبارک تو نیچے ہوتا ہے، تو سامنے کعبۃ اللہ کی دیواریں تو نہیں ہوتی، تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں وہاں پر تو ہم جہت الی الکعبہ کر رہے ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ کی طرف منہ نہیں کرتے، کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، کعبہ کی ڈائریکشن پہ عبادت کرتے. अगर कोई जहाज में बैठा हो उसका क्या हाल होगा, अगर कोई समंदर की गहराई में हो। अल्लाह की शान, अभी कुछ हफ्ता पहले हमें बारबेडोस जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पर सबमरीन थी और वो समंदर की गहराई में ले गई, वहां नमाज का वक्त हुआ, सबमरीन के अंदर नमाज पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह समंदर की गहराइयों में भी नमाज पढ़ी, और इसी तरह आसमानों में जहाज के अंदर बैठ के भी कई बार नमाज पढ़ी, रेगे कानों में भी नमाज पढ़ी, पहाड़ की चोटियों पर भी अल्लाह की इबादत, मैदानों में भी सहराओं में भी मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और जहत इलल काबा करते हैं। तो ये काबा क्योंकि ये अव्वल आलम था, मरकज आलम है और वस्त आलम है, बिल्कुल सेंटर में है। अगर आप मैप को स्प्रेड करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि आधी दुनिया इधर है आधी दुनिया, पर दरमियान में ये जमीन का अजीब टुकड़ा है। मैप को गौर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई हार्ट जो है तीन तरफ से उसके पानी है अरब वेनेजुएला के, और एक तरफ से जमीन से ये मिला हुआ है, और इस तरीके से ये सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को हम जो है ब्लड कर रहा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ने बनाया। देखिए अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करें और मोहब्बत चाहती है कि हम दीदार करें, और इस दुनिया में अल्लाह का दीदार मुमकिन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? अल्लाह की निशानियों का दीदार करेंगे। तो कॉमन की प्रैक्टिस है, अगर माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है और बेटा जो है कहीं सफर पे तालीम हासिल करने के लिए चला जाता है, बाद बच्चे कॉलेज के लिए दूर दूर चले जाते हैं, तो पीछे माँ उसके कमरे में जाती है, उसके कपड़ों को देखती है, उसके बेड को देखती है, उसके शूज देखती है, उसके हर चीज को देखती है, उसको अपना बेटा याद आता है। अल्लाह ताला से हमें शदीद मोहब्बत है और ये मोहब्बत चाहती है कि हम किसी न किसी तरह दीदार करें, और दीदार के लिए अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर दिया कि जन्नत से मेरी मुलाकात होगी, वहां दीदार कराऊंगे। इस दुनिया में इंतजार करें, वहां दीदार करें, यहाँ इंतजार करें, और इंतजार में जो बेकरारी है इसको कैसे सुकून पहुंचाएं, इसका एक ही तरीका है कि अल्लाह की निशानियों को देखें। अल्लाह ने अपनी निशानियां बनाई, अल्लाह ताला ने रिजालुल्लाह को बनाया, 124,000 अंबिया को भेजा, वो अंबिया चलते फिरते अल्लाह की निशानियां थे, अल्लाह वाले थे, अल्लाह के अंबिया थे, चुने हुए लोग थे, जो कुछ कहते थे सच कहते थे, सच वो सामने जाहिर हो जाता था। अजीब बात है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि एक फ्लड आने वाला है और इर्द गिर्द कोई समंदर नहीं, कोई दरिया नहीं, पहाड़ ही पहाड़ है, पर डेजर्ट और जो है माउंटेनियस एरिया में पता कैसे फ्लड आ जाएगा। वो कहेगा अच्छा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहाड़ चढ़ जाएंगे, कितना फ्लड आ जाएगा। कॉमन काम का माइंड यही सोचते इतना कितना आ जाएगा, समंदर के पास नहीं है, ऊपर चढ़ के आ जाएगा, कितनी बारिश बरसेगी। वो कहते थे सब डूब जाएगा, फिर वो कश्ती बनाने लगे अपनी, तो जमाने की वो निशानी थी, वो कश्ती उस जमाने की निशानी थी, बन गई कि देखो ये जो है नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, इसके अंदर लोग बैठ गए, बिना आखिर इसके दूर से जो है पानी निकलने लगा, लोग पहाड़ों पे चढ़ने लगे और बिना आखिर सबसे जबर। अब बाद वालों के लिए भी तो निशानी बन गया ना ये प्लॉट, ये आयात हैं, निशानियां हैं अल्लाह ताला की, कुरान मजीद में इनका जिक्र होता है। उस इस्लाम के बाद आता था, अल्लाह ताला ने पूछा ये क्या है, मैं इससे काम लेता हूँ, टेक लगाता हूँ, बकरियां चराता हूँ, तो मैं नीचे फेंक दूंगा इसको, ये मैं कर्जदार बन गया, ये क्या है निशानी है? पास ले जाओ इसको, अब जाके फिरौन को दिखा दो। फिरौन के पास ले गए, जाके नीचे फेंकता हुआ उसे, अल्जाम बन गया, हाथ दिखाया चमकता हुआ उसे, चमक रहा है। फिरौन कहने लगा ये तो जादू है, तो इसको निशानी न माना, अल्लाह की निशानी न माना। ये फर्क ईसा अलैहि सलाम इसी तरह उन्होंने मुर्दों को जिंदा करके दिखाया, किसी के बने हुए खिलौनों से फूंक मार के उनको जिंदा करके दिखाया कि चिड़िया बन गई देखो। तो इस तरह अंबिया रिजालुल्लाह थे और लाकर निशानियां अल्लाह की दिखाते। कुछ लोग मान जाते थे, कुछ लोग जो है इतराजात करते थे, कहते थे समझ में नहीं मानते थे। अब तक अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब से दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर खूब निशानियां दिखाई, खूब निशानियां दिखाई, हत्ता के चांद के दो टुकड़े करके दिखा दिए, उंगली के साथ इशारा किया गया चांद दिखाई। मानने वालों ने मान ली बात, न मानने वालों ने इनकार कर दिया। अबू जहल उसी तरह जहालत का शिकार रहा कि बात समझ में नहीं, हत्ता के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल हो दुनिया से चले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी निशानियां भेजी इंसानों के लिए। अब फरमाया कि भाई आप लोगों के लिए ये काफी है, लेकिन रहती दुनिया तक इन इस्लाम को जो है दीन बना दिया, इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम। तो अब आइंदा जमाना आने तक क़यामत तक भी तो निशानियां बाकी रहनी चाहिए ताकि आने वाले लोग देखते रहे, सबक हासिल करते रहे। अंबिया की जरूरत नहीं, अब वारिसुल अंबिया आते हैं और वो भी निशानी बंद कर आते हैं। अगर आप गौर करेंगे आपको हैरत होगी कि अंबिया जब भी आए एक काम जरूर हुआ, और वो क्या हुआ? कुछ लोगों ने उनको माना और कुछ लोगों ने उनको झुकला दिया। बस्तियां डिवाइड हो गई। मैंने कहते थे हम सारे भाई भाई रहते थे, मिलजुल के रहते थे आपस में, लेकिन जब भी कहीं कोई नबी गया उसने जाके लोगों को दाएं बाएं कर दिया, सीधे रास्ते से चलने वाले इधर आ जाओ और उल्टे हाथ से चलने वाले इधर चले। बिल्कुल इसी तरह वारिसुल अंबिया आज जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं वहां के नेक लोगों को अलहदा कर देते हैं और वहां के बुरे लोगों को लेबल कर देते हैं। हंसी मजाक की चीज नहीं है, बहुत बड़ा सेंटेंस मैं बोल गया हूं, अगर कोई समझने वाला समझ जाए तो बहुत बड़ी बात। जो लोग हैं कभी आते हैं तो आकर मोहरे लगा देते हैं, ये सही है और ये गलत है। कुछ लोग उनके साथी बन जाते हैं, उनके असहाब बन जाते हैं, और कुछ लोग उनके सामने अकड़ के खड़े हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, पाश पाश हो जाते हैं। दुनिया भी बर्बाद कर जाते हैं, आखिरत भी बर्बाद कर जाते हैं। इसलिए ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की निशानियां होती हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद ने अंबिया के वाकिए सुना सुना कर बताया कि आखिर में मेरा नबी और उसके असहाब जीते, तकलीफें उठाई इन्होंने, ये तकलीफों के रास्ते से ही गुजरते हैं, लेकिन बिला आखिर जीत इनकी होती है और इनसे टकराने वाले हमेशा टूट फूट जाते। बिल्कुल इसी तरह बाद में जो वारिसुल अंबिया आते हैं, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे इस्लामिक हिस्ट्री को, आपको पता चलेगा कि ऐसी शख्सियात बार बार आती रही और बहुत से लोगों ने उनकी बात को माना और जिन्होंने नहीं माना वो टकरा के खत्म हो गए। बहरहाल ये भी निशानियां हैं और ये सबक सीखना पिछली हिस्ट्री से और मौजूदा जो हरकत कर रहे होते हैं उस वक्त अपने आप का एनालिसिस करते रहना ये भी जरूरी है कि मैं इस वक्त क्या करने लगा हूं। बहरहाल बात तो ये चल रही थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी निशानियां बनाई और उनमें से एक निशानी काबतुल्लाह को भी बनाया। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी निशानी अपने कलामुल्लाह को बनाया, इसी तरह बैतुल्लाह को भी निशानी बनाई और बैतुल्लाह के इर्द गिर्द भी निशानियां रखी, क्योंकि मक्का और मदीना ही तो शहर था जहाँ अल्लाह के नबी और अस्हाब को कुफार के मुकाबले ये वही मकाम था कि कुछ अर्सा पहले बिलाल हबशी को अजियत की जाती थी और वो अहद अहद पुकारा करते थे और एक वक्त आया फतह मक्का हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा कि काबतुल्लाह के ऊपर चढ़। हजरत अकरमा जो सब मुसलमान नहीं हुए थे कहने लगे आज मेरा बाप अबू जहल जिंदा होता तो इस सदमे से मर जाता कि बिलाल जो उनका गुलाम था जिसको हबशी समझा जाता था आज बैतुल्लाह के ऊपर चढ़ गए, जिसको वो जलील समझते थे आज वो इज्जत वाला हो गया। अबू जहल तो इसी बात से वो कहते हैं सदमे से मर जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखाते हैं अल्लाह से यारी लगाता है अल्लाह उसको कामयाब कर देते हैं। ये निशानियां हैं, कुत्तों की पूजा करते थे अल्लाह के नबी समझाते रहे जाते रहे। एक वक्त आया आप दाखिल हुए और आप कुत्तों को अपनी छड़ी से इशारा करते थे और गिरते चले जाते टूटते चले जाते थे, भागे वो जिनको खुदा बनाया था। इसी तरह हमने मॉडल के अंदर देखा कि एक जगह है जहां पर जमरात की कंकरियां मारी जाती हैं। जमरात से आज के दौर में तकरीबन 3 मिलियन लोग कंकरी मारते हैं और हमने इसका तजर्बा किया कि जमरात से कंकरी मारने वाला हर जमरे के ऊपर तकरीबन 1 स्क्वायर इंच की कंकरी कम से कम जरूर मारता है। सेवन टेबल्स को आप अगर इकट्ठा करेंगे तो 1 इंच बन जाएगा। अगर आप 3 मिलियन इंच के फीट बना लें तो माउंटेन बन जाता है। ये कंकरियां वहां पर मारी जाती हैं थोड़े से टाइम पे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिनके हज कबूल हो जाते हैं उनकी कंकरियां फरिश्ते उठा के ले जाते हैं, अगर न ले जाते तो क्या होता वहां पर है ना जिंदा मौजदा। हर साल हाजी देखते हैं अपनी आंखों से। अच्छा इसी तरह अभी मॉडल के अंदर ये भी बताया कि यहाँ जमजम होता है और जमजम मक्के वाले भी पीते हैं, हाजी भी पीते हैं, साथ भी ले जाते हैं, दूसरे शहरों में भी जाता है, उमरे वाले भी पीते हैं, हज वाले भी पीते हैं, मुसलसल पीते हैं। अरे भाइयों जो लोग इंजीनियरिंग जानते हैं उनसे पूछ लो कि अगर एक ट्यूबवेल लगा दो और इतना पानी पिया जाए तो इतना पानी निकाला जाए नीचे पानी खत्म हो जाता है और एक ट्यूबवेल का कितने को वो बड़ा ट्यूबवेल होगा, कितनी मशीन उसको पुल कर रही होगी उस पानी को। लेकिन ये पानी खत्म ही नहीं, वजह क्या है, एक तो ये जमजम है और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जूता पानी जमजम का करके इसमें दोबारा डाला था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मौजदा है, इसलिए खत्म ही नहीं होता। और बिल्कुल इसी तरह कुरान मजीद एक मौजदा है, आज बच्चों छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सीनों में कुरान मौजूद है और ये कुरान के महफूज होने का अल्लाह ने वादा कर दिया कि महफूज रहेगा। अब जब कुरान महफूज रहेगा तो कुरान से अमल करने वाले भी तो मौजूद रहेंगे, कुरान को पढ़ने वाले मौजूद रहेंगे, कुरान को पढ़ाने वाले मौजूद रहेंगे, قرآن پڑھانے کے لیے درگاہیں موجود رہیں گی, مسجدیں موجود رہیں گی, چاہے جو مرضی کام کرو, مٹا دو جتنا مٹانا ہے مٹا دو, یہ نہیں نکلے گا. یہ موجودات ہیں, ختم نہیں ہوتے. تم محبت نہیں کرو گے تو محبت کرنے والے اللہ اور پیدا کر دیں گے. جس کو جب بھی اتفاق ہوتا ہے حرم میں جانے کا, تو اوپر والی منزل پہ جا کر نیچے کھڑے ہو کر میں نظارہ کرتا ہوں اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوں کہ اللہ تیرے ساتھ محبت کرنے والے کتنے ہیں, اور اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی محبت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں. آنکھوں سے دیکھ لو, نظارہ کھڑے ہو کے تکتے رہتے ہیں کتنی دیر, کس طرح لوگ حاضر اسود کے بوسے کے لیے تڑپ رہے ہیں, ملتظم سے لگ رہے ہیں, کعبۃ اللہ کو پکڑ رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. عجیب منظر ہوتا ہے, عجیب نظارہ ہوتا ہے. کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ, پھر سے محبت کرنے والے تو بے شمار ہیں, لیکن اللہ ہمارا سب تو صرف ایک ہی ہے. تو الحمدللہ, تو بھائی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے کبھی. اے حقیقت منتظر, نظر آ دیبات مجاز میں. محبت کرنے والا ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ کبھی تو میں تجھے دیکھوں, کبھی اے حقیقت منتظر, نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری زمین نیاز. کہ اللہ میں کئی سجدے کرنا چاہتا ہوں, کبھی تو سامنے تو آ جا. محبوب سے محبت ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ کسی طرح دیکھ لیں. عجیب بات ہے, آسمان کو اللہ نے ایسا پیارا رنگ دیا کہ اس کے نیلے رنگ کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی آنکھیں نہیں تھکتی. اللہ رب العزت نے پانی میں وہ مزہ رکھا کہ آج جتنی مرضی کوک پیپسیاں پی لو, لیکن ایک وقت آتا ہے سامنے جوس بھی پڑا ہوتا ہے, کوک پیپسی بھی پڑی ہوتی ہے, لیکن بندہ کہتا ہے مجھے پانی دے دیں, پانی دے دیں. پانی کا مزہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا. اسی طرح قرآن مجید کا مزہ اللہ رب العزت نے ایسا رکھا ہے کہ جب قرآن حضرات بیٹھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, مختلف انداز ہوتے ہیں پڑھنے کے, کوئی کلام ہے لیکن پڑھنے والے کے انداز مختلف ہوتے ہیں. کون سنتا چلا جاتا ہے, سنتا چلا جاتا ہے, ہر دفعہ مزہ آتا ہے. ایک ہی آیات ہیں, انہیں کو بار بار پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات ایک آیات کو بار بار پیچھے جا کے دہرانے کا مزہ آتا ہے, مختلف جگہوں پہ اسٹاپ کر کے پھر اس کو جوڑنے کا مزہ آتا ہے. قرآن مجید ایسی پیاری کتاب ہے, اللہ اس کے مزے دکھا دے. مطلب اس کو نہیں آتا کہ جو بیمار ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے اس کی زبان پہ آپ اگر کسی چیز بھی رکھ دیں تو اس کو کڑوی لگتی ہے. روحانی بیماری ہوئی تو مزہ نہیں آئے گا, اگر روحانی شفا ہوئی تو اللہ کے کلام کا مزہ آئے گا. اور اسی طرح آیت اللہ کو دیکھنے کا بھی مزہ آتا ہے. عجیب گھر اللہ نے بنایا, فقط اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. اس زمانے میں ایک تسبیح ہوا کرتی تھی, اس کے اندر شیشہ لگا ہوتا تھا. جہاز اتنے نہیں چلتے تھے اس زمانے میں, لوگ تڑپتے تھے. ہمارا ایک جاننے والا تھا, 30 سال تک دعائے مانگتا رہا. اس کا نام تھا دارا, اور دارا جو ہے وہ زمین کی کھدائی کر کے اس کے روٹس جو ہے وہ نکالا کرتا, یعنی لوگوں نے درخت کاٹ لیا اس کی لکڑی استعمال میں لے آئے, अब जमीन जो है वो तो उसमें रूट्स होती थी, तो गांव में लोग दारे को कहते थे कि तुमने रूट्स निकाल ली। दारा कहता था मैंने हज पे जाना है, मुझे पैसे चाहिए, लिहाजा वो रूट्स निकालता था और न वो दिन न रात न सर्दी न गर्मी काम करता ही रहता था। तो अक्सर लोग कहते थे तुम क्या करते हो, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? कहते इसलिए कि मैंने अल्लाह का घर देखा, मैंने अल्लाह का घर देखना है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने उसको अपनी जिंदगी में 20 साल वो रूट्स निकालते हुए देखा कि वो पैसे इकट्ठे करता था, कभी बीमार हो गया उस पर खर्च हो गया, कभी कोई और जरूरत आई उस पर खर्च हो गया, इस तरीके से वो पैसा इकट्ठा करता रहा करता रहा। 20 साल बाद अल्लाह ने उसको अपना घर दिया। इस जमाने में लोग वो सब चीज रखा करते थे और उसके अंदर जो है काबतुल्लाह का दीदार किया करते थे। नमाज पढ़ने के बाद जो तस्वीर होती थी वो उसके साथ बैठ के देखा करते थे, ये अल्लाह का घर है, अब कभी हम भी जाएंगे। चीज तरफ होती है, एक तरफ से काबतुल्लाह की तस्वीर और दूसरी तरफ से मुनावरा 2010 की तस्वीर हुआ करती थी। इसको बैठ के देखा करते थे लोग और दुआएं मांगा करते थे, और फिर जब वहां जाते हैं तो सुभान अल्लाह क्या नूर ही नूर होता है, और वहां जाके जब बंदा पहुंचता है तो दुनिया को तो भूल ही जाता है। कुछ लोग होते हैं जो काबतुल्लाह के दर दीवार को देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हकीकत काबा का मंजर करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, शायर कहते हैं आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, सीधा कोर को क्या आए नजर क्या देखे। भाई जिसका दिल जिंदा होगा वही दीदार करेगा, जिसका दिल ही मुर्दा होगा उसको क्या मालूम होगा कि ये क्या चीज है। हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अंदर जो असबाक हैं, इन अस्पाक में आगे जाकर सबक आते हैं और उनका नाम है हकीकत काबा, हकीकत कुरान और हकीकत सलात। मेरे अस्पाक अभी इतने नहीं थे, मैं हजरत के साथ काबतुल्ला जा रहा था और हम बाब बहद की तरफ बढ़ रहे हैं, अचानक मुझे हजरत जी फरमाते हैं डॉक्टर साहब आपको कुछ नजर आ रहा है। फिर ऐसे लोगों को देखा मजबे को, मैंने कहा हाँ हजरत ये हो रहा है। फिर आगे थोड़ा सा मैं चला तो मुझे हजरत फरमाते हैं कि राजस्थान में आपको एक सबक देता हूं, लेकिन आपको ये सबक फिर दोबारा भी करना पड़ेगा क्योंकि तो अभी मैं उस सबक तक पहुंचा नहीं था। तो हजरत ने उस वक्त हकीकत काबा का सबक दिया। ऐसे चलते चलते मैं पीछे दौड़ रहा हूँ हजरत के पीछे पीछे, हजरत आगे जा रहे हैं मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, चलते चलते मुड़ते हुए हजरत फरमाते हैं आपका हकीकत काबा का नजारा बदल जाता है। अजीब बात है मेरे भाइयों, इसकी कदर कर लो, छोटी चीज मत समझो इसको। अल्लाह ने एक इनाम दिया हुआ है, जो समझो अल्लाह वालों के पास चाबियां होती हैं, चलते चलते यूं ताला खोल देते हैं, नेमतें मिल जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसान फरमा देते हैं। ये काबातुल्ला सुभान अल्लाह इंसानों के दिलों का मकलतीस है। क्या मर्द क्या औरत, क्या अमीर क्या गरीब, क्या सेहतमंद क्या बूढ़ा, सब इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। शरीयत का असूल है कि हर जगह कि भाई मर्द औरत अलग अलग रहते हैं, लेकिन एक मकाम ऐसा है जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द औरतों के लिए अलग अलग औकात नहीं मुकर्रर किए, और वो जगह क्या है? औरतें भी आती हैं, मर्द भी वहां होते हैं। बस पाबंदी लगा दी कि यहां पर रफ्त फसूक जिदाल नहीं होगा। अब इम्तहान आ गया। इम्तहान क्या है? इस जगह पर मर्दों ने अपनी मर्दानगी को भूल जाना है और औरतों ने अपनी निस्वानियत को भूल जाना है। औरत और मर्द के दरमियान जो मजा है, जो कशिश है, यहां जाकर अपनी बीवी से भी टूट जाए, गैर तो गैर है ना। जब एहराम की चादरें पहन लेता है और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा लगा देता है, अब बीवी को भी शहवत नहीं टच कर। ये वक्त फकत अल्लाह, अब अल्लाह की मोहब्बत दिल में ऐसी बैठ जाती है, ऐसी अजीब कैफियत हो जाती है कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ हाजी इसकी तरफ आगे बढ़ता चला जाता है, हत्ता के काबतुल्लाह को देखता है और जाकर हजर असद के बोते लेता है, मुंतजम से जाके लिपट जाता है। मुंतजम कौन सा मकाम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे थे तो हदीस में रवायत है, आप जाकर वहां ऐसे लगते थे जैसे दूध पीने वाला बच्चा माँ की छाती से जाकर चिपक जाए, इस तरह से जाकर इस जगह पर जाकर लिपट जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत हासिल करने की ये जगह, और फिर इसी तरह जो है ये मुल्तजम के ऊपर जो है दुआएं कबूल होती हैं। काबतुल्लाह के और इस इलाके के अंदर 17 मकाम बताए गए जहां पर दुआएं कबूल होती हैं। मकामात कबूलियत है। काबतुल्लाह पे पहली नजर पड़ी, सुभान अल्लाह, मांगो जो कुछ मांगना है मांग लो, वहां से आई ब्लिंक से पहले जो मांगना है मांग लो, ये पहली नजर है। किसी ने बाबा खलीफा रहमतुल्लाह से पूछा, आई ब्लिंक तो बहुत थोड़ा सा टाइम है, हम जाए चिट्ठी मांग के, हमने तो बहुत सारा मांगना होता है, क्या मांगे? उन्होंने जवाब दिया, मांगो अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बनाए, अल्लाह मुझे वो बना जिसकी सब दुआएं कबूल हो जाए। अब खड़े मांगते रहो, जब छोटा सा टाइम है यही दुआ मांगी जाएगी, फिर उसके बाद इसी तरह हजर असद से और फिर इसी तरह मुल्तजम से और काबे काबा पे जाब पे हसीन में मकान इब्राहिम सफा मरवा और इसके दरमियान जो ये सुर्ख जो है सबज जो है केलैन अखजरैन और काबतुल्लाह के अंदर और फिर मीना में मुजदलफा में अराफा में जमरात पे है जी, इन सब जगहों पर मेरे सहयोग भाई दमदम के कुएं के पास खड़े थे भाई कबूल। ये कबूलियत की जगह है जहाँ पर दुआएं मांगनी चाहिए। एक साथ बताते हैं कि मैंने वहां जाके मुल्तजम से लगकर दुआ मांगी, अल्लाह मेरे बेटे को हाफिज, लेकिन मैं अपने होटल में वापस आया, मुझे बीवी की कॉल आई, चलने दिन मैं कब से सोच रही थी बेटे के लिए दाखिल करा दूँ और जो है मैं अभी दाखिल करा के हूँ, आप लिखवा दी, अभी दुआ मांगी और अभी कल के हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह शेखुल हदीस की किताब फ़ज़ाइल हज में लिखते हैं और रवायत करते हैं सनद के साथ जो मुत्तसिल है और कहते हैं कि जनाब मुल्तज़म के साथ जो है लिपट कर दुआएं मांगने जो है इसके में दुआएं कबूल होती हैं, और जिन जिन लोगों ने इसको रवायत किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह ने किताब लिखने तक फरमाया, साथ साथ उन्होंने बताया कि मैंने ये दुआ मांगी थी ये कबूल हुई, फिर अगले ने रवायत भी की और कहा मेरा जिंदगी का तजर्बा ये कि मैंने वहां ये दुआ मांगी कबूल हुई, फिर उसके बाद अगला तजर्बा फिर अगला तजर्बा, हत्ता के हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैंने ये दुआ मांगी थी मुसलमान से लगकर
ये कबूल।
और अगर देखना हो जिंदा मिसाल कि हम आपको ये बता दें कि हमारे शेख ने भी दुआ मांगी थी और हमें बताया, मैंने मुल्तजम तलाक के रास्ता माफ कर दिया, उसी की कबूलियत है कि आज हजरत की बनाई हुई इस मस्जिद में मैं बैठा हुआ जिंदगी में हजरत के ही जानात से पाकर, वरना मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत कि मैं इस मस्जिद में बैठता और मैं आप लोगों के सामने बयान करता कि मेरी शेख की मांगी हुई दुआ कर, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने ये बयानात कर रहा हूँ। सुन भाई, मैं भी तस्दीक करता हूँ कि मुल्तजम से लटकर दुआ मांगने से कबूलियत की। हाँ, अल्लाह अगर जो दुआ नहीं चाहते तो मुल्तजम से जाकर मंगवा दे, याद ही नहीं आती, मांगे क्या। कई लोग वहां जाते हैं और जनाब वहां खड़े रहते हैं और उनको कोई दुआ याद ही नहीं आती, यहाँ खड़े हो क्या मांगे, कैसे के वैसे वापस आ गए, कहते धक्के बड़े लग रहे थे, धक्के लगने की जगह तो नहीं थी। तो अब देखें कि एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है इस हज के अंदर क्या किया कि इंसान को कहा कि दुनिया की जितनी भी डेकोरेशन है उसको खत्म कर दो, लिहाजा दुनिया की डेकोरेशन खत्म करके अब इंसान ने दो चादरें पहनी, खुशबू बंद हो गया और उसके बाद उसने तेल भी नहीं लगाना, कंघी भी नहीं करनी, बाल भी नहीं तोड़ने, नाखून भी नहीं काटने और जनाब सारी पाबंदियों के साथ और पाँव में भी चप्पल पहननी है। तो अब ये पूरा का पूरा एक दीवाना का बन जी, दीवाना की कैफियत है। अब दीवाने ने कुछ कहना भी तो है ना, और दीवाने जो है वो तराने पढ़ते हैं और दीवाने का तराना क्या होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता तकवल मुल्क ला शरीक लक। तो हाजी जो है ये लब्बैक कहता हुआ अब पहुंचता है, तवाफ करता है। किसी ने कहा कि तवाफ करना ऐसा ही है जैसे आजकल वॉशिंग मशीन होती है, उसमें चक्कर लगाए जाते हैं, पैर से चारे निकल जाते हैं, लिहाजा अब ये तवाफ करते हुए इसके अंदर की मैल और गुनाह जिसने इसके नफ्स को खराब किया हुआ था इस पर जाकर झुल जाता है और साफ सुथरा हो जाता है। तो भाई ये सुभान अल्लाह कितना जबरदस्त ये हज का सफर है। आजकल तो भाई हज बड़ा आसान है, हम इरादा करते हैं और हज का सफर शुरू हो जाता है। पैसे भी अक्सर लोगों के पास होते हैं, इस जमाने में तो बड़ी दुश्वारियां थी, जहाज चल पड़े, हर चीज एयर कंडीशन हो गई। हमारे हजरत फरमाया करते थे कि सड़कों के सिवा बाकी हर चीज एयर कंडीशन है, बस में बैठे एयर कंडीशन, होटल में जाए एयर कंडीशन, मस्जिद हराम में जाए एयर कंडीशन। और हजरत फरमाते थे भाई सड़कों के सिवा बाकी हर चीज एयर कंडीशन, अब तुम जाओ सड़कें भी एयर कंडीशन हो गई है। अल्लाह अकबर, बंदा हैरान होता है यार, इन्होंने सड़कें भी एयर कंडीशन कर दी है, अजीब बात नहीं, अरब की गर्मी और उसमें सड़कें एयर कंडीशन हुई। कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया आसान कर दी, इसी तरह अल्लाह ने दीन पे अमल करना भी आसान कर, इसलिए एयर कंडीशन हो गई है कि हम नाजुक हो गए हैं, हमारे जिस्म में जो ताकत नहीं, वरना पहले होता था कि भाई लोग जाते थे और सफर जो है महीनों में होता था, दिनों में नहीं होता था, महीनों में होता था। फिर जाकर जद्दा के एयरपोर्ट पे आजकल 3 घंटे में हम इमिग्रेशन पे गुजरते हैं, वो 3 दिन में गुजरते थे। जहाज होता था, लाइन में लगा रहता था और इमिग्रेशन हो रही होती थी और वो जो आप करते करते 3-3 दिन गुजर जाते थे। 3 दिनों के बाद जद्दा पहुंचे, हम मक्का मुकर्रमा जाना है, ऊँटों का इंतजाम किया जाता था, ऊँटों पे लोग बैठते थे। अब किसी के पास पैसे है तो वो अपना ऊँट भी करेगा, सामान भी तो होता है उसके पास, या सामान रखेगा या खुद बैठेगा। तो लिहाजा कई लोग पैदल चलते थे, सामान ऊँट पे रख देते थे और खुद साथ साथ पैदल चल पड़ते थे। रास्ता मोटरवे नहीं होता था बल्कि पहाड़ों के ऊपर चल कर जाना पड़ता था, ऊपर नीचे जाते थे। तो इस तरह करते हुए और साथ अपना खाना पीना भी रखते थे भाई रास्ते में कुएं तो हर जगह नहीं होंगे, तो लिहाजा इस जगह से उस जगह तक इतना पानी चाहिए, तो पानी रखते थे, वजू भी करना है, खाना भी पकाना है, पीना भी है, साथ रखते थे। अरबों के ऊपर भी बड़ी गुरबत थी उस जमाने में, उस इलाके के रहने वाले भी गरीब थे। हमारे मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बूढ़ा अराबी था, उसने आकर कहा काफले वालों से कि मुझे कुछ खाने पीने को दो। जब खाने के लिए आटा गूंदने के लिए निकाला, तो उसने जल्दी से पकड़ कर मुट्ठी भरी आटे की और पानी में डाली और जल्दी से उसको सोल्यूशन बना के पी लिया। चले का अब मैं इंतजार कर सकता, वरना वो बिल्कुल जैसे फेंट हो रहा होता है ना, जैसे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है, शुगर लेवल लो हो जाता है और बस अब फेंट हो जाते हैं। ऐसी उसकी कंडीशन थी कि मैं अभी फेंट हो जाऊंगा, जब तक रोटी पकेगी उस वक्त तो मैं पता नहीं बचूंगा क्या नहीं, तो उसने जल्दी से वो ले लिया। इस तरीके से ये काफले वालों के पास आते थे, इनके बच्चे आकर जो फ्रूट के छिलके होते थे वो उठा के खा लेते। सुभानअल्लाह, ये हालत थी। कब तक थी? 1960 तक ये हालत थी। 1960 दूर का जमाना नहीं है, उस वक्त तक ये हालत थी। और जो लोग उस वहां गए उन्होंने उनको इसी तरह देखा, तो मालूम हुआ कि भाई हज का ताल्लुक जो है हाल पैसे से नहीं है, बल्कि किस चीज से? मोहब्बत, अल्लाह ताला के साथ जिसकी मोहब्बत है, जिसके आमाल अच्छे होंगे। अमीर गरीब होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। आज ऐसे भी लोग रहते हैं, अगर वो चाहें तो वो जनाब रोजाना चले जाए, लेकिन उनको तौफीक ही नहीं। अक्सर लोग रिपीट कर रहे होते हैं, एक दफा गए फिर जा रहे थे, फिर जा रहे थे, फिर जा रहे थे। लोगों के पास पैसा होता है लेकिन वो जाते नहीं है, क्योंकि उनके दिल में मोहब्बत नहीं होती। ये मोहब्बत का होना जरूरी है। आजकल दारुलूम के मोहतमिम हैं, उनके दादा हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, जो मोहतमिम है, इसमें हजरत जी के खलीफा हैं। सुभान अल्लाह, खुशी वाली बात है कि हमारे दूसरे से ताल्लुक है उनका। और देखो दारुल देवबंद के अभी पिछले दिन आए भी हुए थे यहाँ पर, मुलाकात भी हुई, मैंने उनसे टाइम भी मांगा था कि आप जो है दारुल एहसान के लिए तशरीफ लाए। उनका इरादा भी था लेकिन प्रोग्राम जो है उसका तब्दील हुआ, अचानक उनसे जाना पड़ा, यहाँ नहीं आ सके। अगर नाम यहाँ पर भी इन्वाइट किया हुआ था तो माशाल्लाह। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह के बारे में लिखा कि इनके पास सफर हज का खर्चा नहीं था, ऐसे नहीं थी जैसे पहले बताया कि लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन जज्बा बहुत था हज के जाने का, बहुत शौक। जो ही दिल हजा के दिन शुरू होते हैं, जैसे आजकल दिन शुरू हो गया, अब लोग जाने का वक्त आ गया, कभी सुनेंगे फला दोस्त जा रहा है, फला रिश्तेदार जा रहा है, पाकिस्तान से भी लोग जा रहे हैं, यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, पूरी दुनिया से सफेद सफेद कपड़े पहनकर, जैसे कपास के गोले होते हैं, ऐसे जो है एयरपोर्टों पे नजर आने शुरू हो जाते हैं। हर तरफ ये जनाब हाजी जो है नजर आने लगते हैं दुर्गा के दिनों में। तो जब ये दिन आते थे, आप रात को अचानक उठ के बैठ जाया करते थे, याद आता था, दिन में भी याद करते थे, रात में भी नींद में उठ जाते थे और कहते थे मालूम नहीं उशाक क्या कर रहे हैं, इस वक्त जो है उशाक क्या कर रहे होंगे। फिर कहते थे मालूम नहीं कि उशाक शायद तवाफ कर रहे होंगे, वो शायद मकाम इब्राहिम पे सजदा कर रहे होंगे, शायद कोई गिलाफ़े काबा को पकड़ कर दुआएं मांग रहा होगा, शायद कोई मुंतजम से लग रहा होगा, ऐसे कह के याद कर। काश कि मैं भी उन आशिकों के साथ होता। इनके लिए ज़ुल्हिज्जा के ये 10 दिन गुजारने मुश्किल हो जाया करते थे। हमारे यहाँ तो आज लोग समझ कहते हैं मैंने एक दफा आज कर लिया जी, एक दफा फर्ज होता है बस खत्म। हालांकि ये सफर जो है तो फर्ज थोड़ी गले से उतारना है, तो मुसीबत आई हुई है जो अल्लाह के घर जाना है भाई, हमारे घर एक दफा आ जाए बंदा और कहे बस मैंने एक दफा मुलाकात कर ली है बस काफी जाए, इसका मतलब क्या है? अजीब सा फिक्र है ये। ओ भाई जो एक दफा मोहब्बत कर लेता है उसके बीच आता है मार मार करूं, मार मार जाऊं, फिर देखो कहा नहीं करता उसको। ये तो इश्क का और जो है मोहब्बत का सफर है। अब देखो इनके दिल में क्योंकि अल्लाह ताला की घर देखने की मोहब्बत थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए ऐसा इंतजाम कर दिया कि ये जब वहां गए तो मस्जिद नबी में जाकर हदीस का दर्स देते रहे। 18 साल मस्जिद नबी में इन्होंने गुजारे। पता चले तो जिन जाता होगा ना, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया और वहां पर दर्स हदीस के लिए पैदा हुए इंडिया में, पले बड़े इंडिया में, तालीम पाई इंडिया में और घर बार जो है फैमिली इंडिया में और बाद में भी दफन हुए इंडिया में। यही कि वहीं के हो गए लेकिन नाम के साथ क्या लगा, सदनी। आज कोई उसको इस नाम के बगैर पुकारे समझ नहीं आएगा कौन मौलाना हुसैन की बात कर। जब तक के ना कहा जाए मौलाना हुसैन मदनी की बात समझ नहीं आएगी। न सिर्फ ये मदनी हुए बल्कि इनके पैदा होने वाली सारी नस्ल भी मदनी। आज भी हम कहते हैं कि जनाब मौलाना महमूद मदनी आए थे, मौलाना असद मदनी आए थे, मौलाना अरशद मदनी आए थे, मौलाना जुबैर मदनी आए थे और ये नकल गाड़ी मदनी हो गई है। अजीब सफर है जिसमें मोहब्बत की उसको इनाम मिला, जिसने मोहब्बत की उसको इनाम मिला। मीना के अंदर बैठे हुए थे, एक मौलाना साहब थे मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, वो खिदमत करते थे भाइयों की, खिदमत करते थे। मैं उनको देखने लगा, मुझे बहुत अच्छे लगे भाइयों की खिदमत कर रहे हैं, कभी जा रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह। मैंने किसी से पास ही बैठे हुए बंदे से कहा, मैंने कहा भाई इनकी जज्बा जो है मोहब्बत भाइयों की खिदमत का बड़ा अजीब है। मैंने कहा हाँ असल में इनके दादा ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरी औलाद को हाजियों की खिदमत के लिए कबूल फरमा दे, और वो बड़ी खिदमत किया करते थे हाजियों की, अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। उनके बेटे ने भी बड़ी खिदमत की, अब ये उनके पोते हैं ये खिदमत करते हैं, और वो जो नौजवान आ रहा है वो इसको बेटा है, तो भी काम कर रहा है और वो छोटे सा बेटी से भाग रहा है ना, वो इसका बेटा है। मैंने कहा वाह वाह, दादा ने दुआ मांगी, पोता जो है खिदमत कर रहा है, आगे उसका पोता भी हाजियों में लगा हुआ है। जब मैंने ये मन में देखा, मैंने हाथ या अल्लाह मैं भी तो तेरा बंदा हूँ, मुझे भी कबूल फरमा ले, मैं भी हाजियों की खिदमत करूंगा। मुझे अंदाजा नहीं था मैं क्या मांग रहा हूँ, बस मैंने ऐसे हाथ खींचा और जवाब दुआ पूरी होगी। थोड़ी देर बाद एक बंदा आया तो आके मेरा शोल्डर पे जो है हाथ दिया, कहने लगा डॉक्टर साहब आपको हजर जी बुला। अच्छी बात है, हजर जी के पास गया, अरे जी हजर ने मेरे काम में कहा डॉक्टर साहब 50 आदमियों के खाने का इंतजाम करें। जी अच्छी बात है, अभी कर लेते हैं। चले नहीं इतना काम की बात नहीं है, कितनी कौन सी मुश्किल बात है, बाहर जाते हैं काम ले आते हैं 50 आदमियों का। चले नहीं मीना में देखो कितने बंदे बैठे हुए हैं और हमारे काफिले में 50 आदमी है और इनका क्या बनेगा जो बाकी लोग बैठे हुए हैं। हाँ ये बात सही है, सबको तो खाना खिलाना हमारे लिए केक पकाना बहुत मुश्किल की बात है, पर तो मैं आप लोग ऐसे करें बाहर जाएं सर्वे करें, खाना वाना जो है रेडी कर लें। जैसे ही दूसरे लोग भी अपना इंतजाम कर रहे हैं, हमें खबर भी नहीं है, वो जैसे अपने दफ्तर खान बिछाए तुम भी लगा सबको भूख लगे। अलहमदुल्ला जो भी हमने जाकर 50 आदमियों का खाना तैयार किया और रेडी होकर बैठ गए, जो ही उनका खाना उन्होंने लगाया हमने 50 आदमी का खाना लगा दिया। चलो हमारे लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया। फिर जो हुआ आगे हजरत जी ने फिर कहा ये जी सामान उठा लो, फला कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सारा हज में। एक वक्त ये भी आया कि मुज़दलिफा जब मैं उतर रहा था, यकीन जाने मेरे सर पे इतनी बड़ी हट होगी जो मेरे सर पे जो उठाई हुई थी, और मैं जो है बस के दरवाजे से निकलना चाहता हूँ और सामान भी काबू किया हुआ है, मेरी ऐनक गिर गई कहीं पर और मैं जनाब इस तरीके से जो है वो गठ पूरी उठा कर मैं जा पहुंचा, तो मुझे नहीं पता चला कि ये दुआ कबूल हुई थी। حج ہو گیا، اگلے سال حج کا وقت آیا، میں جس قافلے کے ساتھ جاتا ہوں کاروان ٹریول، ان کے ساتھ میں اچھا خاصا شکل شکل لے کے حاجی صاحب نے گیا ہوا تھا، میرا کیا واسطہ غرض تھا؟ پتا چلا کہ بسیں تین تین ہماری آگے پیچھے جا رہی ہیں اور وہ راستہ ہی بھول گئے، جہاں جانا تھا وہاں جانے کے لیے کہیں اور، اور ہم ملا رہے ہیں اپنے گروپ لیڈر کو اور وہ مل ہی نہیں رہا. خیر لمبی اسٹوری کہ میں ان کو لے کے کس طریقے سے مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ منورہ میں جب پہنچا حاجی نے مجھے برا بلا دینا شروع کر دیا، آپ عجیب گروپ لیڈر ہیں، یہ آپ نے بچوں پر صحیح انتظام نہیں کیا، بنا نہیں کیا. میں اس نے کہا جی آپ کے لیے کھانا لے آتا ہوں. میں نے بھاگا بھاگا گیا، رات کے 2:30 بجے میں بھی کھانا لے آیا، وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور مجھے گندا بھی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی جی اچھی بات ہے، چلو جی کل سے جانا ہم کوئی نہ کوئی نصیحت بھی کیا کریں گے، فلاں بھی کریں گے. اب میں نے کہا ان حاجیوں کو بھی دوبارہ جوڑنا ہے، تو خیر میں لگ گیا ان کی خدمت. جب یہ کر کر آ کے ہم واپس آئے تو پھر وہ حاجی خوش ہو گئے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خدمت کی ہے. انہوں نے آ کے ان کو اطلاع دی کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خدمت کی ہے، بڑی مہربانی، آپ نے گروپ لیڈر بہت اچھا بنایا. میں تو کون سا گروپ لیڈر، آپ نے تو کوئی نہیں بنایا، ڈاکٹر صاحب نے فلاح کیا فلاح کیا. انہوں نے مجھے کال کیا، آپ نے میری اجازت کے بغیر چیک کیا. میں نے کہا بھائی یہ سچویشن ہوئی تھی اور اس میں اگر میں نے کیا تو معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، رجسٹریشن غلطی ہوئی ہوگی، میں اس کو کیا کرتا. میرے سے یہ ہوا چلیں گے کہ بھائی سارے لوگ آپ کی تعریف کیے جا رہے ہیں، ہم نے سب کچھ کیا اور ہماری تعریف نہیں کر رہے، آپ نے وہاں کیا چکر چلا دی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. خیر انہوں نے جا کے اپنے شیخ کو یہ سارا قصہ بھی سنا دیا، حضرت خیر محمد مکی حجازی صاحب کو، کہ جناب ایسے سے یہ واقعہ ہوا، اللہ کا احسان ہے ہمارے گروپ میں وہ ڈاکٹر صاحب تھے اور انہوں نے اسے سنبھال لیا اس وقت میں. انہوں نے ان سے کہا، ان سے کہو کہ وہ گروپ بنائے. اب راجی سے میرے بال کیا کرنے لگے تھے، مکھی صاحب نے کہا جی گروپ بناؤ، مکھی صاحب نے کہا کہ گروپ بنانا پڑے گا، اب اس کے سوا میرے پاس کیا چارہ ہے؟ کہ بھائی خطیب حرم جو ہے حکم دے رہا ہے کہ آپ گروپ بنائے. تو میں نے کہا حضرت جی سے اجازت دیتے ہیں، حضرت جی سے اجازت مانگی، حضرت جی ضرور بناؤ. حضرت جی کس کے ساتھ جاؤں؟ اسی کے ساتھ جاؤں. تو جی اس کے ساتھ آج تک ہم آج کے گروپ لے جا رہے ہیں. کیا ہے کامات ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں، اشخاص ہوتے ہیں، بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جس میں مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. ان کو کیچ کرنا چاہیے. اور میں تو صاف کہتا ہوں بھائی، وہ وقت کی دعا مانگی ہوئی مجھے لگی ہوئی، ہم اللہ میری نسل کو بھی جو ہے حاجیوں کی خدمت کے لیے قبول کرے. اور ہماری نسل میں بھائی ہماری جسمانی اور روحانی دونوں اولاد ہوتی ہے، یاد رکھنا. تو بہرحال بات چل رہی تھی، حضرت مولانا حسین مدنی صاحب نے دعا مانگی، اللہ نے 18 سال مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دینا آپ قبول کروا دیا. نہ صرف حج کروایا بلکہ 18 سال مسجد نبوی میں حدیث کا درس بھی دیا. تو واپس لا کے دوبارہ اپنے گھر میں جو ہے انڈیا میں ہی دفن کیا. تو بھائی اب یہ موقع ہے، موسم آ گیا، حاجی حج کرنے جا رہے ہیں جی. خوش نصیب لوگ ہوں گے جو حج پہ جائیں گے اس سال. کئی لوگ ایسے ہیں جو حج کر چکے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا. جنہوں نے نہیں کیا اور ان پہ حج فرض ہے، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ فرض کشی. اور جنہوں نے حج کیا ہوا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بار بار حج کرنے جائیں، کیونکہ یہ محبت عشق مستی کا سفر ہے، تو پیچھے نہیں رہنا چاہیے بلکہ شاخ کے ساتھ جانے کا ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں. شاعر کہتا ہے اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کہ کل تیرے در پر ہجوم میں عاشقاں ہوں. ان قریب حج کا سیزن آ گیا، عشق جو ہیں وہ جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ پچھلے سال ایک گروپ لیڈر تھے، اس سال ان کو ملیریا ہوا، 3 دن میں فوت ہو گئے. तीन दिन में फौत हो गए। ग्रुप लीडर थे, ग्रुप इस्तीफा भी बना रहे थे, उनके जनाजे थे, लोगों ने लबैक अल्लाहुम्मा लबैक पढ़ा। अजीब बात, ऐसा जनाजा भी अजीब होता होगा। जनाजे में जो लोग आए उनसे पूछा कि भाई कितने लोगों ने इनके साथ हज किया, तकरीबन अक्सर लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हमने इनके साथ। और फिर उनका जनाजा रख के कितनी देर लोग पढ़ते रहे, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक शरीक। तो सुभान अल्लाह भाई, ये हज का सीजन है। बहरहाल जिसने ये शहर नहीं देखा, मेरी फारसी जबान तो अच्छा मैं ये नहीं आती, लेकिन मैं पढ़ता हूँ अशार, तर्जमा करता हूँ, अगर मैं गलती करूँ तो मेरी इसलाह कर देना। शायर कहता है, मक्का बीनी अज तौहीद नूरे, मक्का में तौहीद का नूर देखे, और यसरब अज हबीबुल्लाह ज़हूरे। वो कहते हैं कि अल्लाह के हबीब का ज़हूर देख, कर ई दो शहर मारा तू न दीदे, अगर तूने ये दो शहर नहीं देखे दे दीदी घर दरी दुनिया रखी दे, के फिर तुमने जो है दुनिया में आगे क्या देख। अगर ये शहर नहीं देखे जहाँ नूर बरसता है, रहमत लिल आलमीन रहते हैं, तुमने अगर ये नहीं देखा तो फिर तुमने क्या देख। कुछ भी नहीं। अल्लाह हम सबको बार बार हज उमरे करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अपने घर का दीदार कराए, अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है रोजे अखिरत के हाजिर देने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक तो याद रखो, जब भी हज जाते हैं उनको जो है अपने लिए अखबार की दुआ के लिए कहें, जनाब आप अरफा जाएंगे, है जी आप अल्लाह के घर जाएंगे, हमारे लिए उन मकामात से कबूलियत से दुआ करना। और दूसरी बात उनको ये कहते होते हैं कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अक्सर से हाजिरी देंगे तो मेरे सलाम अर्ज करना। ये दो चीजें उनको जरूर कहती हैं। और जब वो वापस आते हैं तो उनका इस्तकबाल किया जाता है, क्योंकि वो बख्शे बख्शाए हुए ऐसे आते हैं जैसे उनकी माँ ने उनको जन्म इससे पहले कि उनके फिर गलतियां हो जाएं, उनके फिर विवाह करवानी। यदि आप इससे पहले के घर भी पहुंचे तो दाया बस्ती से बाहर निकल के उनके लिए कहा जाता है।